अर्थ संग्रह के प्रतिपाद्य विषय। मीमांसा दर्शन के अनुसार संपूर्ण वेद का संबंध क्रिया अर्थात याग से है। कोई भी ऐसा वेद का वाक्य अथवा शब्द नहीं है जिसका साक्षात अथवा परंपरा याग से संबंध न हो। यहाँ क्रिया कोष्ठक याग कोष्ठक बंध एवं धर्म शब्द पर्यायवाची माने गए हैं। मीमांसक वेद को अपौरुषेय वाक्य मानता है। वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, वह ईश्वर की भी रचना नहीं है। कारण प्राचीन मीमांसा ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानती। संपूर्ण वेद के 5 प्रभेद माने जाते हैं, 1 विधि, 2 मंत्र, 3 नामधेय, 4 निषेध और 5 अर्थवाद। इन 5ों के ही अंतर्गत मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के सभी वाक्य आ जाते हैं। अर्थ संग्रह में इन्हीं 5ों विषयों का क्रमशः विवेचन किया गया है। 1 विधि लक्षण। वेद के उस भाग को विधि कहा जाता है जो लौकिक प्रमाणों से न ज्ञात होने वाले पदार्थ कोष्ठक प्रधान क्रिया अंग क्रिया द्रव्य कर्म अधिकार आदि कोष्ठक बंध का विधान करती है। तत्राज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। उदाहरण के लिए अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्ग कामः, इस वाक्य को विधि माना जाता है क्योंकि यह वाक्य स्वर्ग प्राप्त कराने वाले अग्निहोत्र नामक यज्ञ के अनुष्ठान का विधान करता है। अग्निहोत्र के अनुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि अन्य किसी प्रमाण से नहीं हो पाता। विधि और चोदना। पूर्व पक्षी का कथन है कि जैमिनी ने चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः के द्वारा यह बतलाया है कि चोदना अर्थात विधि के द्वारा जिसका विधान किया जाता है वह धर्म होता है। इस प्रकार धर्म केवल विधि जो कि वेद के 5 अंगों में से एक है का प्रतिपाद्य है, न कि संपूर्ण वेद का। फिर वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, इस धर्म लक्षण में धर्म को वेद का प्रतिपाद्य पदार्थ क्यों माना गया है? सिद्धांति का उत्तर है, जैमिनी के उक्त धर्म लक्षण में इसका पद अर्थ वेद है, विधि मात्र नहीं। विधि और भावना। यजेत स्वर्ग कामः एक विधि है। यजेत पद यज धातु में त प्रत्यय जुड़कर बना है। त प्रत्यय तिंग होने के कारण सामान्य रूपेण आख्यात कहा जाता है और विधि लिंग होने के कारण विशेष रूप से लिंग कहा जाता है। अर्थात त प्रत्यय के भी आख्यातत्व एवं लिंगत्व ये 2 अंश हुए। मीमांसा के अनुसार त प्रत्ययगत आख्यातत्व अंश से आर्थी भावना और लिंगत्व अंश से शाब्दी भावना समझी जाती है। भावना क्या है, शाब्दी एवं आर्थी भावनाएं क्या है, इसका विवेचन अग्रिम पंक्तियों में किया जा रहा है। विशेष विवेचन ग्रंथ के विभाग संख्या 6 से 11 में देखिए। भावना का स्वरूप। भावना के शास्त्रीय स्वरूप को समझने के लिए पहले उसके लौकिक रूप को समझ लेना अधिक सहायक होगा। मान लीजिए कि यज्ञदत्त देवदत्त से कहता है कि ओदनम पच भात पकाओ। देवदत्त को यज्ञदत्त के ओदनम पच वाक्य को सुनकर यह ज्ञान होता है कि यज्ञदत्त का प्रयोजन मुझे देवदत्त में पाकानुष्ठान के प्रति प्रवृत्त अथवा उन्मुखता उत्पन्न करती है। तदनुसार देवदत्त में पाकानुष्ठान के प्रति उन्मुखता उत्पन्न होती है। उन्मुखता रूप मानसिक क्रिया को आर्थी भावना कहा जाएगा और यज्ञदत्त में देवदत्तगत आर्थी भावना को उत्पन्न करने के उन्मुखता रूप मानसिक व्यापार को शाब्दी भावना कहा जाएगा। ध्यान रहे, भावना मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया नहीं। इसी प्रकार यजेत स्वर्ग कामः एक वैदिक विधि वाक्य है। इसका प्रयोजन श्रोता व्यक्ति में यागानुष्ठान के प्रति उन्मुखता उत्पन्न करना है। उक्त वाक्य प्रयोजन अभिप्राय विशेष ही शाब्दी भावना है और श्रोता व्यक्ति में जो याग संपादन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसे आर्थी भावना कहा जाता है। भावना का लक्षण। अर्थ संग्रह विभाग संख्या 7 में भावना का लक्षण भवितुर्भवनानुकूलो भावितुर्व्यापार विशेषः किया गया है। विषय का विस्तृत पिष्ट पेषण न हो इसलिए उचित यही है कि पाठक इस विषय का विचार वही पर देखने का कष्ट करे। भावना के प्रभेद। भावना के 2 प्रभेद हैं, 1 शाब्दी भावना, 2 आर्थी भावना। शाब्दी भावना प्रवर्तक वाक्य के प्रयोक्ता व्यक्ति में रहती है, जैसा कि अभी भावना का लक्षण शीर्षक में बतलाया जा चुका है। शाब्दी भावना भी 2 प्रकार की समझी जानी चाहिए, 1 तो ओदनम पच आदि लौकिक वाक्यों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में रहने वाली शाब्दी भावना और दूसरी यजेत स्वर्ग कामः आदि वैदिक विधि या वाक्यों में रहने वाली शाब्दी भावना। वेद पौरुषेय नहीं है अपितु नित्य शब्दात्मक है, अतएव विधि वाक्य भी नित्य शब्दात्मक ही हुए। उक्त प्रकार से शब्दात्मक विधि वाक्य में रहने के कारण ही इस भावना को शाब्दी भावना कहते हैं। भावना का 2रा प्रभेद आर्थी भावना है। इस भावना की उत्पत्ति शाब्दी भावना से होती है। चूंकि पूर्वोक्त देवदत्तगत ओदन पाक अनुष्ठान के प्रति उत्पन्न प्रवृत्ति तथा वे श्रोतगत यागानुष्ठान के प्रति उत्पन्न वृत्ति को आर्थिक भावना कहा जाएगा। भावना के तीन अंश होते हैं, चाहे वह भावना शाब्दी हो या आर्थिक। प्रत्येक भावना के तीन अंश ये हैं: साध्य, साधन एवं इति कर्तव्यता। जिस प्रकार कुर्यात् इस लौकिक विधि वाक्य स्थल में भावना को किम कुर्यात् अर्थात क्या करें, केन कुर्यात् अर्थात किससे करें एवं कथम कुर्यात् अर्थात कैसे करें, इस प्रकार तीन अंशों की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार यजेत इत्यादि विधि वाक्य स्थल में भी भावना को किम भावयेत, केन भावयेत एवं कथम भावयेत, इस प्रकार तीन अंशों की अपेक्षा होती है। जिन अंशों से क्रमशः इन आकांक्षाओं की शांति होती है उन्हें साध्य, साधन एवं इति कर्तव्यता कहा जाता है। शाब्दी भावना का भाग्य आर्थिक भावना होती है, क्योंकि शाब्दी भावना आर्थिक भावना को उत्पन्न करती है। शाब्दी भावना के ज्ञान का साधन लिंगादि प्रत्यय का ज्ञान होता है। शाब्दी भावना के साध्य को श्रोता व्यक्ति में क्रियानुष्ठान के प्रति होने वाली उन्मुखता रूप आर्थिक भावना कोष्ठक बंध की उत्पत्ति विधेय के प्रशंसक वाक्य कोष्ठक अर्थवाद कोष्ठक बंध से होती है। इसलिए अर्थवाद के द्वारा ज्ञात क्रिया की प्रशंसा की कर्तव्यता समझी जाती है। आर्थिक भावना के भी साध्य साधन एवं इति कर्तव्यता ये तीन अंश होते हैं। आर्थिक भावना का साध्य सर्गादि फल एवं साधन यागादि क्रिया होती है एवं आर्थिक भावना के इति कर्तव्यता रूप में प्रयाज आदि अंग क्रियाएं अन्वित होती हैं। विधि के विभाग अर्थ संग्रह में विधि का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है। प्रथम विभाजन, इसके अंतर्गत तीन प्रकार की विधियां प्राप्त होती हैं। एक विधि, इसी को प्रधान विधि या उत्पत्ति विधि कहा जाता है, यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, यह प्रधान विधि अथवा उत्पत्ति विधि है। अन्य प्रमाणों से अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराने के कारण इसे प्रधान विधि अथवा विधि माना जाता है। गुण विधि, जिस विधि में क्रिया का विधान न किया गया हो अपितु केवल क्रिया के अंग का विधान किया गया हो उसे गुण विधि कहते हैं। इस स्थल में क्रिया की प्राप्ति अन्य उत्पत्ति विधियों से हुआ करती है। इसका उदाहरण दधना जुहोति यह वाक्य है। इस स्थल में केवल दधि का विधान किया गया है। जुहोति पदबोध्य होम रूप क्रिया की प्राप्ति अग्निहोत्रम जुहुयात इस वाक्य से होती है। तीन विशिष्ट विधि, इस विधि को गुण विधि विशिष्ट एवं गुण विशिष्ट कर्म विधि भी कहा जाता है। इस विधि स्थल में गुण एवं क्रिया दोनों का एक ही विधान विशेषण विशेष भावापन्न रूप में किया जाता है। द्वितीय विभाजन, इस विभाजन के अंतर्गत विधि के चार प्रभेद माने गए हैं। एक उत्पत्ति विधि, दो विनियोग विधि, तीन अधिकार विधि, चार प्रयोग विधि। विधियों का मुख्य विभाजन यही है। एक उत्पत्ति विधि, उत्पत्ति विधि उस विधि को कहते हैं जो केवल ऐसे प्रधान कर्म का विधान करती है जिसका ज्ञान अन्य किसी को प्रमाण से नहीं हुआ करती। इसका उदाहरण अग्निहोत्रम जुहोति। प्रथम विभाजन में इसी को विधि या प्रधान विधि कहा गया है एवं विधियों के तृतीय विभाजन में इसी को अपूर्व विधि भी कहा जाएगा। दो विनियोग विधि, विनियोग विधि के द्वारा अंगी एवं अंग के बीच में होने वाले अंगांगी भाव रूप संबंध का ज्ञान होता है। अर्थात इस विधि से यह ज्ञान होता है कि कौन किसका अंग है और किसका अंगी। उदाहरण के लिए दधना जुहोति, इस विनियोग विधि को लिया जा सकता है। यहाँ दधि होम का अंग है और होम दधि का अंगी अर्थात प्रधान। जो दूसरे के लिए हो उसे अंग कहते हैं और जिसके लिए दूसरे हो उसे अंगी कहा जाता है। विनियोग विधि स्थल में कौन अंग है और कौन अंगी, इसका निर्णय मीमांसा की युक्तियों पर आधारित है। विनियोग विधि के द्वारा कौन किसका अंग है और कौन किसका अंगी, इसका ज्ञान छह प्रमाणों की सहायता से होता है। ये छह प्रमाण हैं: एक श्रुति, दो लिंग, तीन वाक्य, चार प्रकरण, पांच स्थान, छह समाख्या। इन प्रमाणों की सहायता से विनियोग विधि के द्वारा अंगांगी भाव का बोध होता है। कभी कभी स्थल विशेष में एक ही साथ उक्त छह प्रमाणों में से एकाधिक प्रमाणों की प्रवृत्ति होने लगती है। ऐसी स्थिति में किसी प्रमाण द्वारा बोध विनियोग प्रामाणिक माना जाए और किस प्रमाण के द्वारा बोध विनियोग अप्रामाणिक माना जाए, ऐसी समस्या उपस्थित होती है। इस विषय में मीमांसकों का यह निर्णय है कि उक्त परिगणित छह प्रमाणों में से जब किन्हीं दो प्रमाणों की प्रवृत्ति विनियोग बोध में एक साथ होने लगे तो प्रत्येक पूर्ववर्ती अपने किसी भी परवर्ती प्रमाण से अधिक बलवान माना जाएगा। इसलिए प्रमाणों से बलवान होने के कारण का निर्देश ग्रंथकार के तत्त्व स्थलों पर किया है। विस्तार भी है श्रुत्यादि प्रमाणों के प्रभेद लक्षण एवं उनके परस्पर बलाबल का विचार प्रकृत स्थल पर नहीं किया जा रहा है। पाठक के इन विषयों का विवेचन ग्रंथ के प्रासंगिक स्थलों पर देखने का कष्ट करे। 3 प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के द्वारा अंगी क्रियाओं के अनुष्ठान के क्रम का बोध होता है। अत एवांगानाम क्रम बोध को विधि रित्यपि लक्षणम। अभिप्राय यह है कि किस अंग क्रिया के अनुष्ठान के पश्चात किस अंग क्रिया का अनुष्ठान किया जाना चाहिए, इस प्रकार अंग क्रियाओं के अनुष्ठान के क्रम का निर्णय प्रयोग विधि के द्वारा होता है। प्रयोग शब्द का अर्थ है अनुष्ठान। शीघ्र अनुष्ठान तभी संपन्न हो सकता है जब अंगभूत क्रियाओं के क्रम का ज्ञान शीघ्र हो, अन्यथा किस क्रिया के पश्चात कौन सी क्रिया अनुष्ठित की जाएगी इसका निश्चय न होने के कारण यागानुष्ठान शीघ्र नहीं हो सकेगा। इससे सिद्ध होता है कि अनुष्ठान की शीघ्रता अर्थात प्राशुभाव का बोध कराने वाली विधि को प्रयोग विधि कहते हैं। प्रयोग प्राशुभाव बोध को विधि प्रयोग विधि। यदि याग की अंग क्रियाएं क्रमशः एक के बाद दूसरी अव्यवहित रूपेण अनुष्ठित नहीं होंगी तो उन सभी अंग क्रियाओं का परस्पर संपर्क स्थापित नहीं हो सकेगा, क्योंकि अंग क्रियाओं का अनुष्ठान अविच्छिन्न रूपेण होते रहना चाहिए, अन्यथा उन क्रियाओं में सहभाव साहित्य नहीं हो सकेगा। हम यह नहीं कह सकेंगे कि यह क्रिया इस क्रिया के साथ अनुष्ठित हुई है, जबकि सभी अंग क्रियाओं का अपनी प्रधान क्रिया के साथ एक वाक्यता का संबंध रहता है, अर्थात अंग क्रियाएं और प्रधान क्रिया सब मिलकर एक वाक्य रूप में होती है। जैसे वाक्य प्रयोग स्थल में सन्निधि का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार इन अंग क्रियाओं में भी क्रमशः अव्यवधान अनुष्ठान का होना आवश्यक होता है। अंग क्रियाओं के क्रम का बोध कराने वाली विधि को ही प्रयोग विधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए वेदम कृत्वा वेदीम करोति यह विधि प्रयोग विधि है, क्योंकि उक्त विधि में प्रयुक्तत्वा प्रत्यय से यह ज्ञात होता है कि वेद के निर्माण करने के पश्चात वेदी का निर्माण करना चाहिए, अर्थात इस विधि से दो अंग क्रियाओं के पूर्वापर भाव का ज्ञान होता है। प्रयोग विधि के द्वारा क्रम का बोध 6 प्रमाणों द्वारा होता है। वे 6 प्रमाण है श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य एवं प्रवृत्ति। प्राय ऐसा भी होता है कि विधि विशेष स्थल में श्रुति आदि एकाधिक प्रमाणों की प्रवृत्ति होने लगती है। एक प्रमाण के द्वारा निर्णित क्रम दूसरा होता है और दूसरे प्रमाण के द्वारा निर्णित क्रम दूसरा। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती प्रमाण द्वारा निर्णित क्रम स्वीकार्य होता है और परवर्ती प्रमाण द्वारा निर्णित क्रम अस्वीकार्य। कारण श्रुति अर्थ पाठ स्थान समाख्या एवं प्रवृत्ति, इन सभी प्रमाणों का प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रमाण किसी भी अपने परवर्ती प्रमाण से बलवान है। लिंग श्रुति से दुर्बल किंतु अन्य सभी प्रमाणों से अधिक बलवान है। मुख्य प्रवृत्ति से बलवान है किंतु अन्य सभी प्रमाणों से दुर्बल। प्रवृत्ति सबकी अपेक्षा दुर्बल है। प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रमाण क्रम निर्णय का बोध शीघ्र कराता है और परवर्ती प्रमाण विलम्ब से, इसलिए प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण से अधिक बलवान होता है। 4 अधिकार विधि। अधिकार शब्द का अर्थ फल स्वामी, क्रिया के फल का स्वामी होना कोशक बंध होता है। फल स्वामी का भी अर्थ फल भोक्तृत्व, फल का भोक्ता होता है। जिस विधि के द्वारा यह ज्ञान होता है कि किस क्रिया के फल का भोक्ता कौन व्यक्ति हो सकता है, उस विधि को अधिकार विधि कहते हैं। सभी व्यक्ति सभी याग के अधिकारी नहीं होते, विशेष गुणों से युक्त व्यक्ति ही याग विशेष का फल प्राप्त कर सकता है, अतः वही व्यक्ति उस याग विशेष का अधिकारी होता है। अधिकार विधि स्थल में यागकर्ता के विशेषण भी सुने जाते हैं। इन्हीं विशेषणों को हम अधिकार कहते हैं, कारण इन्हीं विशेषणों के बल पर ही अनुष्ठाता व्यक्ति अनुष्ठित क्रिया के फल का भोक्ता होता है। उदाहरण के लिए यजेत स्वर्ग कामः एक अधिकार विधि है। जिस व्यक्ति में स्वर्ग की कामना रूप अधिकार होगा वही याग निष्पादनांतर स्वर्ग की प्राप्ति कर सकेगा, अन्य नहीं। इसी प्रकार राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत भी एक अधिकार विधि है। इस विधि के द्वारा यह बोध होता है कि राजस्व याग के अनुष्ठान का फल उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो राजा हो और साथ ही साथ उस व्यक्ति को स्वराज्य की इच्छा हो। इस प्रकार राजत्व एवं स्वराज्य कामना इन दो अधिकारों का बोध कराने के कारण इस विधि को अधिकार विधि कहते हैं। तृतीय विभाजन विधि का तृतीय विभाजन मंत्र प्रकरण में अनुसंगत प्राप्त होता है। यही विधि के तीन प्रभेद माने गए हैं। अपूर्व विधि, नियम विधि एवं परिसंख्या विधि। इस स्थल पर कुमारिल भट्ट के तंत्रवार्तिक का एक श्लोक उद्धृत किया गया है, जिसमें उक्त तीनों विधियों के लक्षण दिए गए हैं। श्लोक इस प्रकार है, विधिरत्यंतम प्राप्तौ नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। एक, अपूर्व विधि। अपूर्व विधि के लिए कुमारिल ने विधि शब्द का प्रयोग किया है। विधि के पूर्व विभाजन में इसी विधि को उत्पत्ति विधि या प्रधान विधि कहा गया है। दो, नियम विधि। नियम विधि का लक्षण है, नाना साधन साध्य क्रिया मेक साधन प्राप्ताव प्राप्त स्या पर साधन अस्य प्रापको विधि नियम विधि, अर्थात अनेक साधनों से सिद्ध होने योग्य क्रिया की सिद्धि तब अनभिप्रेत साधन के द्वारा होने लगती है जब जिस अभिप्रेत साधन प्राप्ति नहीं हो रही होती उसकी प्राप्ति कराने वाली विधि को नियम विधि कहते हैं। उदाहरण द्वारा इस विधि का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। ब्रीहीन वहंती वाक्य को नियम विधि माना जाता है। ब्रीहीन वहंती का अर्थ है धान कूटना। धान से भूसी हटाने के अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे पत्थर से रगड़कर भूसी हटाना, नाखूनों से धानों को छीलकर भूसी हटाना आदि। इसी प्रकार अन्य साधनों से भी तुष्य विमोक हो सकता है। जब अवहनन के अतिरिक्त अन्य किसी साधन की प्राप्ति होने लगती है तब अप्राप्त अवहनन का विधान ब्रीहीन अवहंती विधि वाक्य द्वारा किया जाता है। तीन, परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि की शब्दावली तो विध्यात्मक होती है किंतु इसका अभिप्राय निषेधात्मक होता है। परिसंख्या शब्द का अर्थ वर्जन बुद्धि होता है। परिसंख्या विधि का लक्षण है उभयोश युग पद प्राप्त वितर व्याप्ति वृत्ति परो विधि। परिसंख्या विधि अर्थात जहाँ दोनों वैकल्पिक पदार्थों की युगपत प्राप्ति हो रही हो तो दोनों में से एक विशेष पदार्थ की निवृत्ति की बोधक विधि को परिसंख्या विधि कहा जाता है। पंच पंच नखा भक्ष्याह वाक्य परिसंख्या विधि का एक उदाहरण है। इस वाक्य का सरल अर्थ यह है कि पंजे वाले पांच जीव खरगोश शाही गोह गैंडा और कछुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए भक्ष्य हैं। अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय को चाहिए कि वे इन पांच जीवों को खाए, किंतु पंच पंच नखा भक्ष्या का परिसंख्या विधि बोध्य अर्थ है पंच पंच नख के अतिरिक्त जीवों का भक्षण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ विधि श्रुत पंच पंच नख भक्षण की निवृत्ति ही अर्थ है। भूभुक्षित व्यक्ति में किसी भी जीव को भक्षण करके अपनी भूभुक्षा को शांत करने की प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है, चाहे वे जीव उक्त पंच पंच नख के अंतर्गत हो या तदतिरिक्त अपंच पंच नख के अंतर्गत। परिसंख्या विधि प्रकृति स्थल में श्रुत पंच पंच नख जीवों के भक्षण का विधान न करके पंच पंच नख जीवों के अतिरिक्त जीव भक्ष नहीं है इस विषय का बोध करती है। परिसंख्या के दो प्रभेद होते हैं, श्रौती परिसंख्या और लाक्षणिकी परिसंख्या। लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोष माने जाते हैं। एक, श्रुतिहीन अश्रुत कल्पना एवं प्राप्त बाध। इन दोषों का विवेचन विभाग संख्या 65 में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधियों का यह त्रिविध विभाजन दृष्टिकोण भेद से किया गया है, अर्थात उन्हीं विधियों का प्रकारांतर से तीन रूपों में वर्गीकरण किया गया है। ब्रीहीन अवहंति विनियोग विधि भी है और नियम विधि भी। यजेत स्वर्ग काम अपूर्व विधि भी है और दृष्टिकोण भेद से अधिकार विधि भी। दो, मंत्र। विधि के पश्चात वेद के दूसरे प्रभेद मंत्र पर विचार किया गया है। यागानुष्ठान के लिए अनेक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इन पदार्थों में घृत काष्ठ पात्र हव्य आदि द्रव्य आते हैं। यही नहीं, याग अंग क्रियाओं एवं देवता आदि के बिना भी संपन्न नहीं हो सकता। सारांश यह है कि याग के संपन्न होने में अनेक पदार्थ अपेक्षित होते हैं, चाहे वे द्रव्य रूप देवता रूप अथवा क्रिया रूप हो या अन्य किसी रूप में हो। यागानुष्ठान में उपयुक्त पदार्थों का स्मरण मंत्रों द्वारा किया जाता है। यही मंत्रों की उपयोगिता है। यह नियम है कि प्रयोग समवेत पदार्थों का स्मरण मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही करना चाहिए। मंत्रैरैव स्मर्तव्यम् प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण कराना ही मंत्रों के उच्चारण का दृष्ट प्रयोजन है। यदि उक्त प्रकार से मंत्रों के उच्चारण का दृष्ट प्रयोजन नहीं माना जाएगा तो मंत्रों के उच्चारण का प्रयोजन अदृष्ट मानना होगा। इस प्रकार मंत्रोच्चारण अदृष्ट फलक होने लगेगा, किंतु जहाँ कहीं दृष्ट फल की संभावना हो अदृष्ट फल की कल्पना को मीमांसक उचित नहीं मानता। संभवते दृष्ट फलकत्व दृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्, इसलिए मंत्रोच्चारण का प्रयोजन प्रयोग समवेत पदार्थों का स्मरण करना है। किंतु जिन मंत्रों में प्रयोग समवेत पदार्थों के स्मरण कराने की क्षमता नहीं होती उन मंत्रों के उच्चारण को आगत्या अदृष्टार्थक मान लेना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्र भी यागादि क्रियाओं के अनुष्ठान में उपयोगी होने के कारण धर्म परक होते हैं। 3. नामधेय। मंत्र के पश्चात ग्रंथकार ने वेद के तृतीय प्रभेद नामधेय पर विचार प्रस्तुत किया है। नामधेय शब्द का अर्थ है नाम अर्थात संज्ञा होता है। नामधेय शब्द कर्म मीमांसा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है याग विशेष का नाम। नामधेय शब्द याग नामधेय का संक्षिप्त रूप है। विधियों में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष को योग शक्ति के द्वारा प्राप्त की अर्थ का बोधक न मानकर यदि याग विशेष का नाम मान लिया जाता है तो उस शब्द को नामधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए उद्धिदा यजेत पशु कामः, यह एक विधि वाक्य है। इस वाक्य का साधारण अर्थ है पशु प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति उद्भिद से याग करे। उद्भिद शब्द का यौगिक अर्थ खनित्र कुदाली जिससे मिट्टी खोदी जाती है होता है, क्योंकि उद्भिद शब्द की व्युत्पत्ति ही है उद्भिद्यते ऊर्ध्वं विदीर्यते भूमिरनेन। किंतु मीमांसक प्रकृति स्थल में उद्भिद शब्द का अर्थ कुदाल या फावड़ा नहीं लेता, वह तो उद्भिद शब्द को याग विशेष का नाम नामधेय मानता है। उसकी दृष्टि में एक विशेष याग को उद्भिद कहते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मीमांसक जहाँ चाहे वही किसी शब्द को याग नामधेय मान ले। किसी शब्द को याग नामधेय मानने के कुछ कारण निमित्त होते हैं, जिन निमित्तों के आधार पर किसी शब्द को याग नामधेय मानना पड़ता है। यदि वहाँ उन शब्दों को याग नामधेय न माना जाए तो असह्य अनर्थ उत्पन्न हो जाए। 4 ऐसे निमित्त हैं जिनसे शब्द याग के नामधेय माने जाते हैं, वे हैं मत्वर्थ लक्षणा होने का भय, वाक्य भेद होने का भय, तत्प्रख्य शास्त्र और तद्वय प्रदेश। उक्त चारों निमित्तों का सुदाहरण परिचय ग्रंथ के प्रासंगिक स्थल में देखना चाहिए। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि यदि किसी स्थल में शब्द विशेष का यौगिक अर्थ लेने पर मत्वर्थ लक्षणा माननी पड़े तो मत्वर्थ लक्षणा रूप दोष हो जाने के भय से वहाँ उस शब्द का यौगिक अर्थ नहीं लिया जाता अपितु उसे याग का नामधेय मान लिया जाता है। 2 इसी प्रकार यदि कहीं शब्द विशेष के यौगिक अर्थ को लेने से वाक्य भेद होने लगे तो उस दोष से बचने के लिए उस शब्द को याग का नामधेय माना जाएगा। 3 जहाँ गुणबोधक अन्य श्रुति प्रमाण प्राप्त होती वहाँ गुणार्थक शब्द भी उस गुण का बोधक न होकर याग का नामधेय हो जाता है। उपमान एवं उपमेय भिन्न होते हैं। जहाँ विधि एवं अर्थवादगत उपमेय एवं उपमान शब्द एक ही हो वहाँ विधिगत शब्द याग का नामधेय होगा। कुछ लोग उत्पत्ति विशिष्ट गुणबलीय स्वम को नामधेय होने में पांचवा कारण मानते हैं, किंतु सिद्धांत पक्ष उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्व को तत्प्रख्य शास्त्र रूप निमित्त में ही अंतर्भूत कर लेता है। 4 निषेध। नामधेय के पश्चात ग्रंथकार ने वेद के चतुर्थ प्रभेद निषेध पर विचार किया है। निषेध ऐसे वाक्य को कहते हैं जो पुरुष को अनर्थ कारणभूत क्रियाओं के करने से रोकते हैं। पुरुषस्य निवर्तकम् वाक्यम् निषेधः। विधि वाक्य किसी क्रियानुष्ठान के प्रति पुरुष को प्रवृत्त करता है, जबकि निषेध वाक्य पुरुष को निवृत्त करता है। अर्थात विधि वाक्य पुरुष में क्रियानुष्ठान के प्रति प्रवर्तना उत्पन्न करता है, जबकि निषेध वाक्य निवर्तना। निषेध वाक्य का सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण न कलंजम भक्षयेत है। न कलंजम भक्षयेत का साधारण अर्थ है पुरुष कलंज विषाक्त बाण से मारे गए पशु पक्षी का मांस न खाए। यह वाक्य पुरुष को कलंज भक्षण रूप क्रिया के करने से निवृत्त करता है, कारण कलंज भक्षण से नरक रूप अनर्थ अनिष्ट की प्राप्ति होती है। निवर्तना बोध। निषेध वाक्यों के द्वारा निवर्तना का बोध होता तो है, किंतु किस प्रकार निषेध वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, इसलिए उसे निषेध कहा जाता है। न कलंजम भक्षयेत वाक्य को इसलिए निषेध वाक्य माना जाता है कि इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य के द्वारा निवर्तना का प्रतिपादन तभी हो सकेगा जब भक्षयेत पदगत लिंग प्रत्यय के अर्थ का अन्वर्थ नयर्थ के साथ हो। कारण लिंग प्रत्यय का अर्थ प्रवर्तना होता है, उसका नयर्थ के साथ अन्वय होने पर निवर्तना का बोध होगा, क्योंकि नई का यह स्वभाव ही है कि वह अपने अन्वित पदार्थों के विरोधी का ख्यापक होता है। प्रवर्तना की विरोधिता निवर्तना में ही होती है। भक्षेत गत आख्यातत्वाशंस्वाच्य आर्थी भावना का नई अर्थ से अन्वय नहीं हो सकता। कारण आर्थी भावना लिंगार्थवाच्य शाब्दी भावना के प्रति उपसर्जन भूत गौण है। एक के प्रति उपसर्जन भूत पदार्थ दूसरे से अन्वित नहीं हो सकता। जैसे राज पुरुष मानय, इस वाक्य स्थल में राजा का अन्वय आनय से नहीं होगा, कारण राजा पुरुष के प्रति उपसर्जन गौण है। इसी प्रकार भक्ष धातु के अर्थ का अन्वय भी नयर्थ के साथ नहीं होगा, क्योंकि धातुअर्थ आर्थी भावना के प्रति उपसर्जन रूप में विद्यमान है। कलंज के अर्थ का भी नयर्थ के साथ अन्वय नहीं होगा, कारण तब तो न कलंजम का अर्थ कलंज विरोधिनम भक्षयेत, किंतु वाक्य प्रयोक्ता का अभिप्राय ऐसा नहीं है। प्रत्ययार्थ से नयर्थ के अन्वय में बाधक। प्रत्ययार्थ से नयर्थ के अन्वय होने में दो बाधक होते हैं, तस्य व्रत मित्युपक्रम और विकल्प प्रसक्ति। प्रथम बाधक तब होता है जब कर्तव्य बोधक वाक्यों के प्रकरण में निषेध वाक्य का पाठ मिलता है। ऐसे स्थलों पर निषेध वाक्यों का अर्थ निवर्तना नहीं लिया जाता, अपितु प्रवर्तना लिया जाता है। इसलिए प्रत्ययार्थ का नयर्थ से अन्वय न होकर धात्वर्थ का अन्वय होता है। दूसरा बाधक वहाँ माना जाता है जहाँ शास्त्र प्रतिपादित पदार्थ का विधान वैकल्पिक होने लगता है। विकल्प का होना भी दोष ही है, जिससे बचने के लिए धात्वर्थ का नयर्थ से अन्वय नहीं किया जाता। इस प्रकार विकल्प आमन नहीं होगा। विकल्प और प्रतिषेध, किसी किसी स्थल पर विकल्प आपन्न होने पर विकल्प भी स्वीकार्य होता है और धात्वर्थ से नयर्थ करके निषेध भी माना जाता है, क्योंकि उन स्थलों पर ऐसा मानने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही शेष नहीं रहता। विधि एवं निषेध दोनों के द्वारा कृतु का अनुष्ठान संपन्न होता है। निषेध वाक्य बोध कुछ ऐसे भी निषिद्धमान पदार्थ होते हैं जिनका आचरण याग में नहीं करना चाहिए, अर्थात वहाँ विकल्प नहीं माना जाता है। अर्थवाद, अंत में वेद के अंतिम प्रभेद अर्थवाद पर विचार किया गया है। अर्थवाद भी परंपरा धर्म से संबद्ध रहते हैं। विधि वाक्य के द्वारा विधेय पदार्थ की प्रशंसा और निषेध वाक्य द्वारा निषेध पदार्थ की निंदा अर्थवाद द्वारा की जाती है। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। अर्थवाद के प्रभेद, ग्रंथकार ने अर्थवाद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। प्रथम वर्गीकरण में अर्थवाद के दो प्रभेद माने गए हैं, विधि शेष एवं निषेध शेष। दूसरे वर्गीकरण में अर्थवाद के तीन प्रभेद माने गए हैं, गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद। प्रथम वर्गीकरण, इस वर्गीकरण का आधार विधेय एवं निषेध क्रिया की क्रमशः प्रशंसा एवं निंदा है। एक विधि शेष विधि वाक्य एवं उसके अर्थवाद वाक्य में एक वाक्यता होती है। विधिनात्वेक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः, वाक्य का मुख्य अंश विधि है एवं अर्थवाद उसका शेष अंश। इसलिए उस अर्थवाद को जो विधि द्वारा विधेय पदार्थ की स्तुति करता है विधि शेष कहा जाता है। विधि शेष अर्थवाद विधेय की प्रशंसा द्वारा व्यक्ति को विधेय पदार्थ का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करता है। दो, निषेध शेष, इसी प्रकार जो अर्थवाद निषेध वाक्य द्वारा निषेध पदार्थ की निंदा करता है निषेध शेष कहा जाता है। निषेध शेष अर्थवाद का यही प्रयोजन है कि वह निषेध पदार्थ की निंदा करके श्रोता व्यक्ति में निषेध क्रिया के अनुष्ठान के प्रति निवर्तना उत्पन्न करता है, अर्थात उस व्यक्ति को अनर्थभूत क्रिया के करने से रोकता है। द्वितीय वर्गीकरण, अर्थवाद के प्रकृति वर्गीकरण का आधार अर्थवाद के प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान का अन्य प्रमाणों से होना या न होना है। एक, गुणवाद, जिस अर्थवाद के वाच्यार्थ का विरोध प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होता है और फिर आगत्या लाक्षणिक अर्थ स्वीकार किया जाता है गुणवाद कहा जाता है। दो, अनुवाद, जिस अर्थवाद का वाच्यार्थ अन्य प्रमाण या प्रमाणों से पूर्व ही ज्ञात रहता है उसे अनुवाद कहते हैं भूतार्थवाद। जिस अर्थवाद का विषय न तो किसी प्रमाण से बाधित होता है और किसी प्रमाण द्वारा पूर्व से ज्ञात ही रहता है, उसे भूतार्थवाद कहते हैं। विषयानुक्रमणी विषयाः पृष्ठांकाः क प्रस्तावना एक मंगल श्लोक पृष्ठ संख्या एक दो मीमांसा दर्शनस्य प्रथम सूत्रस्य निर्देशः पृष्ठ संख्या चार उक्त सूत्रस्य पर्यवसितार्थ पृष्ठ संख्या छह चार धर्म लक्षण विचारः पृष्ठ संख्या दस पांच वेदस्य अखिलस्य धर्म प्रतिपादकत्वमेव पृष्ठ संख्या चौदह छह विधिपदे धातु प्रत्ययांशार्थ विवेचन पृष्ठ संख्या सत्रह प्रत्ययांश योर्भावना द्वय बोधकत्वम पृष्ठ संख्या उन्नीस सभेद शाब्दी भावना निरूपणम पृष्ठ संख्या तेईस शब्द भावनाया अंश त्रयम पृष्ठ संख्या अट्ठाईस आर्थी भावना लक्षणम पृष्ठ संख्या बत्तीस आर्थी भावनाया अंश त्रयम पृष्ठ संख्या सैतीस वेदस्य लक्षणम विभागाश पृष्ठ संख्या तिरालीस ख विधि प्रकरणम विधि लक्षण पृष्ठ संख्या पैतालीस गुण विधि स्वरूपम पृष्ठ संख्या छियालीस विशिष्ट विधे स्वरूपम पृष्ठ संख्या सैतालीस वाक्य भेदापत्ते निराकरणम पृष्ठ संख्या उनचास गुण विधित्व शंका निराकरणम पृष्ठ संख्या इक्यावन ज्योतिष्टोमेन इत्यादि विधि विधेरूप रुभय विधित्व शंका निराकरणम पृष्ठ संख्या बावन विधि चतुर्विध पृष्ठ संख्या पचपन उत्पत्ति विधेर लक्षणम पृष्ठ संख्या सत्तावन यागस्य द्वे रूपे पृष्ठ संख्या उनसठ विनियोग विधि पृष्ठ संख्या तिरसठ विनियोग विधि सकारी भूतानि षट प्रमाणानि पृष्ठ संख्या सड़सठ श्रुते लक्षणम प्रभेदाश पृष्ठ संख्या इकहत्तर विनियोग त्र्याह श्रुते त्रैविध्यम तृतीया विभक्ति श्रुतेरुदाहरणंच पृष्ठ संख्या तिहत्तर द्वितीय विभक्ति श्रुतेरुदाहरण पृष्ठ संख्या छिहत्तर सप्तमी विभक्ति श्रुतेरुदाहरणम पृष्ठ संख्या न्यासी एक पदैकाभिधान श्रुत्योरुदाहरणम पृष्ठ संख्या इक्यासी अमूर्त पदार्थस्यापि भावनांगत्वम पृष्ठ संख्या तिरासी श्रुति लिंगाधिव्यः प्रबलाः पृष्ठ संख्या छियासी लिंग स्वरूप कथनम पृष्ठ संख्या छियासी लिंग वाक्यादिभ्यो बलवत पृष्ठ संख्या बानवे वाक्य स्वरूपाख्यान पृष्ठ संख्या सत्तानवे प्रकृति विकृत्यानारभ्य विधीनाम लक्षणानि पृष्ठ संख्या एक सौ दो प्रकरण लक्षणम पृष्ठ संख्या एक सौ छह प्रकरणस्य द्वैविध्यम महाप्रकरण लक्षणं च पृष्ठ संख्या 108 अवांतर प्रकरण लक्षणं पृष्ठ संख्या 111 संदंश लक्षणं तदुदाहरणं च पृष्ठ संख्या 112 प्रकरणं क्रियाया एव साद्विनियोजकं पृष्ठ संख्या 116 प्रकरणस्य स्थानादिभ्यो बलवत्तम पृष्ठ संख्या 118 स्थान लक्षणं पृष्ठ संख्या 120 यथा संख्य पाठाद्विनियोगः पृष्ठ संख्या 121 सन्निधि पाठ विनियोग पृष्ठ संख्या 122 अनुष्ठान सादेश्याद विनियोग पृष्ठ संख्या 123 अनुष्ठानम समाख्यातः प्रबलम पृष्ठ संख्या 124 समाख्या लक्षणम पृष्ठ संख्या 127 विनियोजितांगानि द्विविधानि पृष्ठ संख्या 129 सन्निपत्योपकारकारकाण्यांगानि पृष्ठ संख्या 129 आराद उपकार कार्यंगानि पृष्ठ संख्या 133 प्रयोग विधि लक्षणम पृष्ठ संख्या 137 क्रमे श्रुत्यादिनि षट प्रमाणानि श्रुति लक्षणं च पृष्ठ संख्या 141 अर्थ क्रम लक्षणम पृष्ठ संख्या 145 पाठ क्रम लक्षणम पृष्ठ संख्या 147 स्थान क्रम लक्षणम पृष्ठ संख्या 152 मुख्य क्रम लक्षणम पृष्ठ संख्या 159 मुख्य क्रम पाठ क्रमाद दुर्बल पृष्ठ संख्या 162 प्रवृत्ति क्रम लक्षणम पृष्ठ संख्या 167 अधिकार विधि लक्षणम पृष्ठ संख्या 169 पुरुष विशेषण रूपस्याधिकारस्य बहुत्र श्रुतत्वम पृष्ठ संख्या 172 क्वचित क्वचित चाधिकारस्य पुरुष विशेषणत्वेना श्रुतत्वम्। पृष्ठ संख्या 174 ग मंत्र प्रकरणम् मंत्र विचार पृष्ठ संख्या 179 नियम विधि विचार पृष्ठ संख्या 180 परिसंख्या विधि लक्षणम् पृष्ठ संख्या 185 परिसंख्या या भेद द्वयम् पृष्ठ संख्या 188 परिसंख्या या भेद त्रयम् पृष्ठ संख्या 190 मंत्र विशेषाणा उच्चारणस्य दृष्टार्थकत्वम् पृष्ठ संख्या 191 घ नामधेय प्रकरणम् नामधेय लक्षणम् पृष्ठ संख्या 193 नामधेयत्वे निमित्त चतुष्टयम् पृष्ठ संख्या 195 मत्वार्थ लक्षणाभयान् नामधेयत्वम् पृष्ठ संख्या 196 वाक्य भेद भयान् नामधेयत्वम् पृष्ठ संख्या 198 तत्प्रख्य शास्त्रा नामधेयत्वम् पृष्ठ संख्या 201 अग्निदेवता प्रापक शास्त्रांतर विचार पृष्ठ संख्या 203 तद्वय पदेशेन नामधेयत्वम् पृष्ठ संख्या 207 नामधेयत्वे उत्पत्ति विशिष्ट गुण बलीयस्त्वम् न निमित्तांतरम् पृष्ठ संख्या 209 ग निषेध लक्षणम् निषेध लक्षणम् पृष्ठ संख्या 213 नैर्थेन शब्द भावनाया अन्वय पृष्ठ संख्या 214 नैस्व भाव निरूपणम् पृष्ठ संख्या 216 नैर्थेन प्रत्यार्थस्यान्वये द्विविधम् बाधकम् पृष्ठ संख्या 218 आद्यम् बाधकम् पृष्ठ संख्या 219 द्वितीयम् बाधकम् पृष्ठ संख्या 226 निरपेक्षयो शास्त्रयोर्बाध्य बाधक भाव पृष्ठ संख्या 229 बाधा योगोपसंहार पृष्ठ संख्या 231 पर्युदासोपसंहार भेद निरूपणम् पृष्ठ संख्या 235 कुत्रचित् विकल्प प्रसक्तावपि प्रतिषेधाश्रयणम् पृष्ठ संख्या 237 प्रतिषिध्यमानस्य नानार्थ हेतुत्वम् पृष्ठ संख्या 240 अर्थवाद प्रकरणम् अर्थवाद लक्षणम् पृष्ठ संख्या 245 अर्थवादस्य द्वैविध्यम् पृष्ठ संख्या 247 अर्थवादस्य त्रैविध्यम् पृष्ठ संख्या 250 उपसंहार पृष्ठ संख्या 253 अर्थ संग्रह रचना प्रयोजन पृष्ठ संख्या 255 अर्थ संग्रह शब्दार्थ कोश पृष्ठ संख्या 257